रात गहराती जा रही थी। घर के बाहर नीम के पेड़ से आती हल्की हवा खिड़की के पर्दे को हिला रही थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जिसे बस दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक काट रही थी। रैना अपने कमरे में बैठी थी, बैग साइड में रखा था और उसके पिताजी राजेश जी पलंग पर टिके हुए किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ था, लेकिन थकान के कारण बार बार बंद होती पलकों से साफ झलक रहा था कि अब उन्हें आराम की जरूरत है। पापा, अब किताब बंद कर दीजिए, रैना ने पास जाकर धीरे से कहा। राजेश जी मुस्कुराए। बस दो पन्ने और बेटी, पता है जब तुम छोटी थी ना तो यही किताब मैं जोर जोर से पढ़कर सुनाता था। रैना का दिल भर आया, उसने किताब धीरे से उनके हाथों से ली और मेज पर रख दी। अब आपको नींद लेनी चाहिए, दवाई भी खा ली है ना? राजेश जी ने सिर हिलाया। हाँ ले ली, तुम बेकार में इतना परेशान मत हुआ करो, मैं ठीक हूँ। रैना ने उन्हें तकिए पर ठीक से लिटा दिया। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। कौन? उसने पूछा। दरवाज़ा धीरे से खुला और विक्रम अंदर आया। उसके हाथ में पानी का ग्लास था, चेहरे पर वही गहरी नज़रें और होठों पर हल्की मुस्कान। मैंने सोचा अंकल के लिए पानी रख दूँ, रात में ज़रूरत पड़ सकती है। रैना ने उसे देखा, फिर बोली, धन्यवाद, लेकिन पापा को सब दवाइयाँ और पानी पास में ही रख दिया है, आप परेशान मत होइए। विक्रम कमरे में आकर पास रखी टेबल पर ग्लास रख देता है, फिर सीधे राजेश जी की ओर देखता है। अंकल, आप चाहें तो आज मेरे कमरे में चलकर आराम कर लीजिए, वहाँ बड़ी जगह है और मैं आपके पास रहूँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। राजेश जी मुस्कुराए। अरे नहीं बेटा, मैं तो यहीं ठीक हूँ, बेटी के पास रहूँगा तो चैन रहेगा, विक्रम ने हल्की गंभीरता से कहा। लेकिन रैना, तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो, तुम्हें भी आराम करना चाहिए, हर वक्त अंकल की देखभाल करना, तुम्हारे ऊपर बहुत चिंता है, मुझे रहने दो उनके साथ, मैं हूं ना, चिंता मत करो। रैना की आंखों में हल्की नमी आई, उसने धीमे स्वर में कहा, विक्रम ये मेरे पापा हैं, जब तक मैं हूं उनकी देखभाल मैं ही करूंगी, ये मेरा हक भी है और मेरी जिम्मेदारी भी। विक्रम ने उसकी ओर गहराई से देखा, उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई, जैसे कहीं भीतर छिपी नाराजगी को दबा रहा हो। तुम मुझे अपना दुख क्यों नहीं बांटने देती रैना, हमेशा सब कुछ अपने ऊपर ले लेती हो। रैना ने सिर झुका लिया, वह कुछ कहना चाहती थी पर शब्द गले में अटक गए, उसने बस धीरे से कहा, क्योंकि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। कमरे में एक क्षण को खामोशी छा गई, बाहर कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन भीतर माहौल और भी भारी हो गया। राजेश जी अब तक आधे सो चुके थे, उनकी सांसें गहरी हो रही थीं। रैना ने धीरे से कंबल उन्हें ओढ़ाया और पास रखी लाइट धीमी कर दी। फिर वह पलंग के बगल में बने छोटे बेड की ओर बढ़ी और अपने पिताजी को आराम से वहां लिटा दिया। उनकी आंखें अब पूरी तरह बंद हो चुकी थीं, नींद ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया था। विक्रम दरवाजे के पास खड़ा था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बाहर से वह शांत और गंभीर दिख रहा था, लेकिन भीतर उसका मन बेकाबू था। रैना, तुम इतनी आसानी से मेरी पकड़ से नहीं निकल सकती, मैंने कितनी कोशिश की थी तुम्हें अपने जाल में फंसाने की, लेकिन हर बार तुम बच निकलती हो, तुम समझती हो कि तुम्हारी मजबूती तुम्हें बचा लेगी, नहीं, एक दिन तुम्हें मानना ही होगा कि तुम मेरी हो। उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी, उसने धीरे से कदम आगे बढ़ाए और रैना के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। तुम थक जाती हो ना रैना, दिन भर काम फिर अंकल की चिंता, तुम चाहो तो ये बोझ मैं बांट सकता हूँ। रैना ने उसकी आंखों में देखा, जैसे उस गहराई में छिपे राज को समझना चाहती हो। तुम्हें मेरी चिंता क्यों है विक्रम, तुम्हारी तो अब अपनी जिंदगी है, तुम्हारी शादी हो चुकी है, फिर मेरे लिए ये सब क्यों? विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी छोड़ नहीं पाते, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता रैना, कभी नहीं। रैना का दिल एक पल को कांपा, पर उसने तुरंत अपने आप को संभाला। ये सब कहना आसान है, लेकिन हकीकत यह है कि मैं अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं हूं, मेरी दुनिया मेरे पापा तक सिमट गई है और मुझे बस उनका सहारा चाहिए। विक्रम की नजरें और गहरी हो गईं। तुम जितना भी कह लो, मैं जानती हूं कि तुम अंदर से अकेली हो और एक दिन तुम खुद मानोगी कि तुम्हें किसी की जरूरत है, शायद मेरी। रैना ने बिना जवाब दिए बस अपने पापा का हाथ पकड़ा और चुपचाप बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। कमरे की घड़ी ने 12 बजाए, रात और गहरी हो गई थी। बाहर हवाओं की सरसराहट और भीतर दिलों की खामोशी दोनों टकरा रहे थे। विक्रम कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर धीरे से पीछे हटकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। जाते जाते उसने एक नजर रैना पर डाली, वो नजर जो कह रही थी, तुम चाहे जितना भी दूर रहो पर मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। रैना ने लंबी सांस ली और अपने पापा का माथा सहलाने लगी। उनकी नींद गहरी हो चुकी थी। उसने मन ही मन कहा, पापा जब तक आप हो मैं मजबूत रहूंगी, चाहे दुनिया कितनी भी उलझ जाए मुझे आपकी देखभाल करनी है, बाकी सब सब मायने नहीं रखता। उसके दिल में उठते सारे सवाल उस पल शांत हो गए। रात आगे बढ़ती रही, चांद खिड़की से झांकता रहा और उस कमरे में एक तरफ बेटी की अधिक देखभाल, दूसरी तरफ एक आदमी का अनकहा जुनून, दोनों की चुप्पी एक नई सुबह का इंतजार कर रही थी। विक्रम दरवाजे से लौटने ही वाला था कि फिर ठिठक गया। उसकी नजर रैना पर पड़ी जो पापा का हाथ थामे बैठी थी। रैना, उसने धीमे स्वर में पुकारा। रैना ने सिर उठाया, उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी। विक्रम ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और नरम लहजे में बोला, तुम इतनी चिंता मत किया करो, अंकल जी तुम्हारे साथ हैं और मैं भी हूँ, अगर कभी जरूरत पड़े तो मैं हमेशा पास रहूंगा, तुम्हें अकेले सब संभालने की जरूरत नहीं है। रैना ने हल्की सी मुस्कान दी पर उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। धन्यवाद विक्रम, लेकिन पापा की देखभाल मेरी जिम्मेदारी है, आप बेफिक्र रहिए। विक्रम ने गहरी सांस ली, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम्हारा बोझ थोड़ा हल्का हो, तुम इतनी मजबूत बनने की कोशिश मत करो, इंसान कभी कभी। रैना ने उसकी बात बीच में ही रोक दी, विक्रम रात बहुत हो चुकी है, पापा सो चुके हैं, तुम्हें भी आराम करना चाहिए, कल सुबह बात करेंगे। उसकी आवाज में नरमी थी लेकिन इशारा साफ। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा मानो कुछ कहना चाहता हो, पर होंठों पर शब्द थम गए। उसने सिर हिलाया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। जाते जाते उसने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, गुड नाइट। रैना ने जवाब नहीं दिया, उसने बस पापा के कंधे पर कंबल ठीक किया और उनकी सांसों की लय सुनती रही। दरवाजा बंद होने की आहट ने कमरे की खामोशी और गहरी कर दी। विक्रम अपने कमरे की ओर चला गया लेकिन उसके मन में वही अटकी हुई बात थी, एक दिन तुम मानोगी रैना कि तुम्हें मेरी जरूरत है।